शेर जी लिखे है कि साधु हमें 90 साधु तो नापास है, साधु हमें 90 साधु नापास है और 10 है ब्याह में भी किताक जिज्ञासु है कि पतो नहीं है। ये दशा है गृहस्थियों में, तो और ज्यादा कठिनाई है गृहस्थियों में। कोई थोड़े से कि कोई निकल सकता, कोई बहुत कितों में से कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए, उनमें खासकर अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग इत्यादि हैं। परंतु इस घोर कलिकाल में सबके लिए भक्ति प्रधान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। आत्मा के उद्धार के लिए कलयुग सबसे बढ़िया है। 10,000 वर्षों तक ध्यान करने से सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी, वे भगवान अब कलयुग में कीर्तन करने से प्राप्त हो जाते हैं। वेदव्यास जी ने भी कलयुग की बड़ी प्रशंसा की। भगवान राम के गुण निर्मल और शुद्ध हैं, उनके गाने से बिना परिश्रम मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान में भक्ति हो जाए तो सब दुर्गुण दुराचार अवगुण दुख सबका नाश हो जाता है। राम भगति मनी उर्बस जाके दुख लवलेशन सपने उताके। राम की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में रहती है उसके स्वप्न में भी दुख नहीं होता। बसई भगति मनी जही उर माई खल कामादि निकट नहीं जाई। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि विराजमान है, काम क्रोध लोभ और मोह आदि दुष्ट उसके निकट जा ही नहीं सकते। गरल सुधा सम अरिहित होई तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। भगवान की भक्ति के प्रताप से विष अमृत हो जाता है, बैरी मित्र हो जाता है। जैसे मीरा जी के लिए राणा जी ने विष भेजा तो अमृत बन गया, उनके देवर शत्रु थे तो मित्र बन गए। श्री राम और कृष्ण तो एक ही हैं, वे सच्चिदानंद घन परमात्मा त्रेता युग में राम बने और द्वापर युग में कृष्ण बने। हम लोग कृष्ण की कथा तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु गुनते नहीं हैं। गुनने का अर्थ उस कथा के अंदर डूब करके उसका मनन करना चाहिए, ये नहीं करते। ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं और कथा को ऊपर से चले निकलते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जाने से रत्न मिलता है, ऐसे ही भगवान की कथाओं में तत्व रहस्य समझना चाहिए, तब कथा का गुन्ना होगा। भगवान की प्रत्येक लीला में उनके गुण प्रभाव तत्व रहस्य देख देख कर मुग्ध होना चाहिए। भगवान के भक्तों के गुण और चरित्र इस कलिकाल में बड़े महत्व के हैं। जैसी भगवान की महिमा, ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा। हमको किसी ने बताया कि भगवान के मंदिर में जाओ तो वहां भक्त की महिमा गाओ, और किन्हीं संतों के पास जाओ तो भगवान की महिमा गाओ। ठीक कहा है। भगवान के मंदिर में जाओ तो भक्तों की महिमा, और भक्तों के पास जाओ तो भगवान की महिमा गाओ। भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला में गुण प्रभाव की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए, तत्व रहस्य समझना चाहिए, भगवान के आचरण संसार के कल्याण के लिए होते हैं। किसी ने पूछा, भगवान तो निराकार रूप से सबका उद्धार कर सकते हैं, फिर वे साकार रूप धारण करके युग युग में क्यों परिश्रम उठाते हैं? राम बनते हैं तो जंगलों में भटकते हैं, कृष्ण बनते हैं तो जेल खानों में जाते हैं, क्या है? भगवान तो सर्वशक्तिमान निराकार रूप से सबका उद्धार कर ही सकते हैं, फिर क्या ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? तो उनको गीता में पढ़ना चाहिए, भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तीन बात कही, संतों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए, तीन मेरे अवतार के हेतु हैं। ये बातें निराकार रूप से भगवान नहीं कर सकते, इन तीनों बातों के लिए साकार रूप में आना ही होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, जो मनुष्य उनका तत्व रहस्य समझते हैं वो दुखालय संसार में कभी नहीं आते। जन्म की दिव्यता तो जन्म लेने से जानी जाती है, उसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। माने हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ना, तब ये भगवान के जन्म की दिव्यता का ज्ञान होगा। भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान कोई लीला नहीं करते, कोई आचरण नहीं करते, तो संसार में लोगों के लिए कल्याण का मार्ग कौन खोलता? इतना ही नहीं, भगवान के अवतार से उनकी लीला बनी, अब उस लीला को गाने से, नाम रूप को गाने से, जन्मोत्सव मनाने से हजारों हजारों आदमियों का उद्धार होता है। भगवान ने एक समय अवतार लिया लेकिन उनका उद्धार हर समय चल पड़ा। भगवान ने अवतार लेकर एक सरल साधन की सड़क बना दी, अब लोग खूब उस पर चलो। भगवान के अवतार के बहुत से हेतु हैं, वो सब हेतु भगवान जानते हैं। अपने को तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान जो कुछ करते हैं भलाई के लिए कल्याण के लिए करते हैं। एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने तर्क दिया कि तुम्हारे भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, ये हम नहीं मानते। क्यों? हमारे में बुद्धि है, उसका प्रयोग तो करें। देखो ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनको कितने कितने बड़े फल दे दिए, और बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको छोटे छोटे फल दिए, फिर कहते हो भगवान जो कुछ करते हैं सो अच्छा करते हैं। अब देखो बट का पेड़, पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे फल दिए, और कद्दू है, लौकी है, कोड़ा और मतीरा है, ये लताओं के पैदा हुए। फल बड़ा तो वृक्ष भी बड़ा हो, बड़े वृक्ष के बड़ा फल और छोटे वृक्ष के पौधे के लता के छोटा फल होना चाहिए। भगवान की ये बात हमारे समझ में नहीं आती, ऐसा वो बोल रहा था। उस समय में वो दो आदमी ऐसे बातचीत करते जा रहे थे, वे आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, गर्मी पड़ रही थी, बैठ गए, यही बात चल रही थी। इतने में ये एक आम का फल उसके सिर पर गिरा, उसके सिर में सन्नाटा छाया, घबराया। अरे तुम्हारे भगवान तो बड़े अच्छे हैं, यदि कद्दू जितना कोड़े जितना फल इसमें लगता और मेरे सिर पर लगता तो मेरी तो कपाल क्रिया हो जाती। तब उसने स्वीकार किया कि तुम्हारे भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, ये मानना ठीक है कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, उसमें नुक्ता चीनी से कोई लाभ नहीं है। भगवान ने जो कुछ आपके लिए किया वो तो आपके आनंद के लिए किया, आप उसमें दुख पाते हो। हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेने में भगवान का अपना थोड़े कोई स्वार्थ होता है। एक समय भगवान ने बंसी बजाई, कृष्ण भगवान ने बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियां जंगल में अपने पति पुत्र घर किसी की परवाह न करके कृष्ण के चारों तरफ बैठ गई। जब वे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों ये क्या किया, परिवार को पुत्र को घर को छोड़कर आई, ये अच्छा नहीं किया। और रात्रि के समय में, रात्रि के समय स्त्री को तो अपने घर से निकलना ही नहीं चाहिए, तुम पर पुरुष के पास आई, स्त्रियों को पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए था, क्यों आई तुम? गोपियों ने जवाब दिया, हे नटवर आपने कैसी मीठी बंसरी बजाई, इस बंसरी बजाने का अर्थ हमने तो यही समझा कि आप इस बंसरी में से हम लोगों को नाम ले लेके बुला रहे हैं कि ए गोपी तुम आओ, ए गोपी तुम आओ, तुमने पहले तो हमको निमंत्रण दे दिया, अब आते हमको यहां से भगाते हो। मैंने तो किसी गोपी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे कृष्ण ऐसे मत बोलो, तुमने जब बंसरी बजाई थी तो हमारा ध्यान उस बंसरी में गया, उस बंसरी की ध्वनि में ऐसा आनंद आया कि जैसे आप हमको बुला रहे हो, इसलिए हम आ गए। तुम ये क्या बात बोलते हो नटवर कि रात्रि के समय में पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, क्या आप पर पुरुष हैं? आप तो हम सबकी आत्मा हैं, आप हमारे पति के भी पति हैं, आपके पास आने में ये कानून थोड़ी लागू पड़ता है, आपके पास आने में कोई अपराध थोड़ा ही है। भगवान बंसरी को होठ से हटाए और गोपियों के बीच में खूब खिलखिलाकर हंसे और कहने लगे, गोपियों बस यही मेरा गूढ़ रहस्य है, इसी बात को समझने समझाने के लिए मैंने तुमको बंसरी से बुलाया है। गोपियां भोली भाली नहीं है, बहुत जानती हैं, पर क्या जानती हैं? भगवान के प्रेम नाद को जानती हैं, प्रेम से निकला हुआ शब्द है। बाद में सबने मिलकर नाच गान प्रारंभ किया, इसी को हम रासलीला बोलते हैं। उस समय में मानो भगवान में और गोपियों में कोई प्रेम की बाढ़ आ गई, परंतु गोपियों को एक भीतर में अभिमान हो गया कि हमारे समान धन्य और कौन है, ये गोपियों को अभिमान आ गया। भगवान आत्मा है सबकी, वो जान गए तो भगवान एकदम अदृश्य हो गए। जब गोपियों को मालूम हुआ कि भगवान और एक सखी दोनों गायब हैं, तब वे खोज करने लगी। खोज करते करते भगवान के चरण चिन्ह से आगे बढ़ेगी ये क्रिया हुई, और आगे गए तो खोजते खोजते वो सखी मिल गई जिसको भगवान ले गए थे। उससे पूछा, ए सखी तुम यहां अकेली कैसे आई? उसने कहा, गोपियों सखियों मैं अकेली नहीं आई, मुझे कृष्ण लेकर आया था। फिर क्या हुआ? वो हमको छोड़कर चला गया। ए सखी फिर तुम भी हमारे समान रो रही हो, और क्या कर सकती हूं? फिर सब सखियां गोपियां मिलकर के भगवान के विरह में डूबने लगी और भगवान की लीलाएं गाने लगी। अंत में भगवान के विरह सागर में डूबी गई और उनको बहुत ज्यादा दुखी देखा तो भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। गोपियों ने ये नहीं पूछा कि भगवान आप कहां गए थे, कहां छिपे थे और यहां कैसे आए, कुछ नहीं पूछा। इतना प्रेम और विरह था, ये पूछने की बजाय वे तो भगवान से चिपट गई, भगवान के जो है पास में बैठ गई, भगवान को निहारती रही, भगवान को हृदय में बसा लिया। ये सब लीला है, इसमें क्या तत्व रहस्य है ये तो भगवान जाने। मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं वो ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भगवान की जो लीला है वो अलौकिक है। भगवान जानते हैं उस अलौकिक तत्व को, या उनके निकटवर्ती भक्त लोग जान सकते हैं। हर किसी को इन चीजों का पता नहीं है। प्रेम और दया ये भगवान के गुण हैं। नीति धर्म क्या है? भगवान ने आदेश दिया कि रात्रि के समय में स्त्रियों को अपने घर को छोड़कर और जगह नहीं जाना चाहिए। ये नीति है, धर्म है। भगवान के रहस्य को गोपियां जानती थी। उन्होंने भगवान को उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात थी कि रात्रि में हमको यहां नहीं आना चाहिए था तो फिर आपने रात्रि में ये बंसी क्यों बजाई? इसलिए हम आई। वास्तव में बात यही है, भगवान परीक्षा करते हैं। गोपियों ने ठीक युक्ति संगत और विवेक पूर्वक उत्तर दिया। कितना सुंदर उत्तर है कि आप परपुरुष हैं? नहीं, आप तो हमारी आत्मा है। आपका और हमारा तो कभी अलगाव होता भी तो नहीं है। आप परमेश्वर हैं। ये जो कानून आपने बताया ये तो मनुष्यों पर लागू पड़ता है, ये आप पर थोड़े लागू पड़ता है। गोपियों का ऐसा प्रेम देखा तो भगवान की धर्म नीति डूब गई, प्रेम लहराने लगा। प्रेम सबसे ऊंचा गुण है। रासलीला में भगवान अंतर्धान हो गए, ये प्रभाव है। भक्तों के हृदय में अभिमान आ जाए तो वह पतन का कारण है। इसलिए वे रासलीला करते करते गोपियों को चेता देते हैं। जिस गोपी को साथ में लेकर भगवान चले गए थे वह आगे जाकर थककर कहने लगी, मैं थक गई हूं, आप मुझे कंधे पर उठा लो। क्योंकि उस गोपी को अभिमान हो गया था कि इन सब गोपियों से ज्यादा मैं प्रेम करती हूं, तभी तो मुझे लेकर आए। भगवान ने कहा लो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वह बैठने लगी तो भगवान अंतरित हो गए। भगवान ने चेतावनी दे दी। भगवान का कहीं प्रकट होना और भगवान का अंतर्धान होना, ये दोनों भगवान का प्रभाव है। तो प्रेम के साथ भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं। भक्तों को शिक्षा देना ये भगवान की नीति है। भक्तों के साथ खेल कूद करना, माखन चुराना, दौड़ना, ये भगवान का दया और प्रेम का व्यवहार है। इस प्रकार भगवान की हर एक क्रिया में नीति, धर्म, तत्व, रहस्य देखते रहना चाहिए। कभी कभी भगवान कठोर लीला करते हैं, उसमें क्या रहस्य है वो भी रहस्य बताते हैं। भरत शत्रुघ्न को 14 बरस के लिए छोड़कर भगवान वन में चले गए। कितना कठोर विरह है भरत और शत्रुघ्न के लिए, कठोर व्यवहार है। गोपियों को छोड़कर भगवान मथुरा चले गए, एकाएक चले गए। कितना लंबा वियोग दिया गोपियों को, तड़फाया, कभी आए भी नहीं। भगवान ने ऐसा व्यवहार क्यों किया जिससे भक्त तड़फते हो? भगवान की विरह व्याकुलता में भगवान की याद बनी रहती है और उस याद में एक अनोखा आनंद मिलता है, प्रेम की वृद्धि होती है, मिलने की उत्कट अभिलाषा होती है। इसलिए भगवान कठोर लीला करते हैं कि याद खूब आए। उस याद के बाद, उस कठोर लीला के बाद, उस बहुत लंबे विरह व्याकुलता के बाद जब भगवान मिलते हैं तो खूब आनंद आता है, प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। आप सोचो 14 बरस तक भरत से अलग रहे तो क्या भरत की कोई हानि हुई? गोपियों को छोड़कर भगवान मथुरा चले गए तो गोपियों का कोई नुकसान हुआ? दूसरी बात है, भगवान के वियोग में भरत ने देखा कि ऐसी बात है तो सदा के लिए भगवान के साथ ही रहे, वियोग में तो भगवान के साथ ही रहे, संयोग से क्या लाभ? भगवान का जब संयोग रहता है तब भगवान की इतनी याद थोड़ी ही रहती है। वियोग काल में सदा ही भक्त भगवान के साथ रहता है, संयोग से क्या लाभ? संयोग में जो लाभ होता है वो वियोग से मालूम चलता है। जीवन काल में जिनको लोग उच्च दृष्टि से नहीं देखते उनको मरने पर उच्च दृष्टि से देखते हैं, ऐसा हमने देखा संतों को, महात्माओं को मरने के बाद उच्च दृष्टि से देखा। आज भी ऐसा ही देखने में आ रहा है। गोस्वामी जी की रामायण का प्रचार उनके जीवन काल में इतना नहीं था, न इतना आदर था जितना उनके न रहने पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनके जीवन काल से इतने लोगों का उद्धार नहीं हुआ जितना उनके मरने के बाद उनके रामायण से हुआ। रात्रि का समय है, बिजली के प्रकाश में सत्संग हो रहा है या कोई नाच गान हो रहा है, ध्यान से सुनना, एकदम बिजली बंद हो गई तो लाचार हो जाते हैं, विकलता हो जाती है। 2 ही मिनट में बिजली आ गई, ऐसा लगता है मानो मरे हुए व्यक्ति के प्राण आ गए हों। अब बिजली के संयोग में, बिजली के वियोग में संयोग की क्या कीमत? उसी प्रकार अच्छे पुरुष का प्रभाव, अच्छे पुरुष का अभाव हो जाने पर उनकी कीमत मालूम पड़ती है। भगवान के वियोग में अधिक प्रेम होता है, भगवान प्रेम की वृद्धि के लिए वियोग देते हैं। भगवान संयोग वियोग हमारे, भगवान का संयोग वियोग हमारे भले के लिए होता है। बहुत मार्मिक बातें हैं ये। गोपियों की विरह व्याकुलता में उद्धव अपने ज्ञान और योग को भूल गए, भगवान के संयोग में संभव है ऐसी दशा नहीं होती उद्धव जी की, जो गोपियों के विरह अवस्था में उद्धव जी को ज्ञान और योग भूल गए वहां भगवान के पास में ऐसी दशा उद्धव की नहीं हुई। भगवान ने, भगवान से उद्धव जी ने प्रार्थना की कि मुझे आपने गोपियों के पास जिस काम के लिए भेजा वो मैं समझ गया, आपने मुझे ज्ञान और योग सिखाने के लिए नहीं अपितु प्रेम सिखाने के लिए भेजा, ये अब मुझे समझ में आया है, अब मुझे पता चला कि आपने मुझे प्रेम सिखाने के लिए भेजा था, अतएव हे प्रभु आप मुझे लता पता भी बनावे तो ब्रज में बनावे, जिन पर उनके चरणों की धूली पड़े और मेरा कल्याण हो जाए। उद्धव ने गोपियों की विरह व्याकुलता देखी तो उनकी भी क्या दशा हो गई थी, हनुमान जी को अभिमान हो गया कि मेरे समान भगवान का कोई भक्त नहीं है, इसलिए उन्हें भरत की दशा देखने को मिली। भगवान ने हनुमान जी को भेजा, जाओ भरत को जाकर सूचना दो हमारी, और राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात, भरत की ये दशा देखी, हनुमान जी से मिले। भरत ने कहा हनुमान मैं क्या देखकर तुम्हारे ऋण से मुक्त हो सकता हूं। हनुमान जी तो देख करके द्रवित हो गए। हनुमान जी पर असर पड़ा कि हम तो भगवान के पास रहकर भक्ति करते हैं, वो भक्ति इतनी कीमती नहीं है जितनी भगवान के वियोग में भक्ति होती कीमती है। हनुमान जी ने मन में सोचा कि आज तक तो मैं भरत की प्रशंसा भगवान के मुख से सुनता आया था, आज वो प्रत्यक्ष देख रहा हूं। भक्ति भक्त का ऐसा रूप हनुमान जी की कभी समझ में ही नहीं आया। हनुमान है लक्ष्मण है ये भगवान के साथ रहे, उनकी उतनी छाप नहीं पड़ी जितनी भरत की छाप पड़ी। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान भले के लिए वियोग देते हैं, भगवान हमें रोगी बनाकर तड़फाते हैं। जैसे कुशल वैद्य होता है वो भूखे मार मार करके रोगी का रोग दूर करता है, रोटी देना अभी रोटी मत देना अभी रोटी मत देना, भी केवल दाल का पानी देना, मूंग की दाल वो भी गिने हुए मूंग के पान नहीं देना, वो रोग एकदम निकल जाता है तब जाकर उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ऐसे ही भगवान हमें रोगी बनाकर तड़फाते हैं, उसमें हमारा हित ही हित भरा है। भगवान के विषय में युक्ति की खोज नहीं करनी चाहिए, उन पर तो श्रद्धा करते रहना चाहिए। वीरबल का सिद्धांत था कि जो कुछ हो उसमें खुश रहो। एक दिन बादशाह ने पूछा, ए वीरबल, तुम ये मानते हो कि भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही अच्छा करते हैं, कभी अहित नहीं करते क्या? कि नहीं महाराज, हमारे भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, कभी किसी के लिए कोई दुख की बात नहीं करते। अच्छा, हां महाराज ठीक। एक दिन बादशाह किसी तलवार की धार देख रहे थे, देखते देखते अंगुली कट गई, खून निकलने लगा, दर्द होने लगा, सब लोग हा हू करने लगे। बीरबल से पूछा गया, बीरबल ने कहा, भाई देखो भगवान ने कोई न कोई अच्छा ही समझ के किया होगा। बादशाह को क्रोध आ गया, हुक्म दे दिया इस बीरबल को कैद कर लो। कुछ दिन बाद बादशाह शिकार खेलने के लिए गए, घोड़ा बड़ा चंचल था, किसी घोर जंगल में बादशाह को ले गया, दूसरे साथी पीछे छूट गए। बादशाह किसी दूसरे राजा की राज्य की सीमा में घुस गए। उस राजा ने पुत्र होने पर देवी के सामने नरबलि देने की प्रतिज्ञा कर रखी थी और उसके पुत्र हो गया था। अब दूतों को बलि के लिए किसी मनुष्य को खोजने के लिए कहा। इधर बादशाह एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे, वे दूत आए, उनको पकड़ लिया, ले जाकर के उनको देवी के सामने रख दिया। देवी के पंडे ने कहा, अरे इसको क्यों लेके आए, इसके तो एक अंगुली कटी हुई है, किसी काम का नहीं है, ये बलि के काम का नहीं है, सर्वांग परिपूर्ण होता है वही बलि के योग्य होता है, छोड़ दो इसको। बादशाह को छोड़ दिया। अब बादशाह उस कटी अंगुली को देख देख कर बड़े खुश हो रहे कि अरे ये मेरी अंगुली आज नहीं कटी होती तो मौत आ जाती। बादशाह को वीरबल के वचन कानों में गूंजने लगे, याद आने लगे। रास्ते में उसकी सेना मिली, सेना ने कहा, महाराज आप कहां चले गए? तो बादशाह के तो हृदय में बड़ी बेचैनी थी कि जल्दी चलो। क्यों महाराज? नहीं, बीरबल के पास चलना है। क्यों महाराज? कि चलो। अब बादशाह के सामने ज्यादा क्यों बोलने की किसकी हिम्मत, नगर में प्रवेश करते ही अपने महल के वहां नहीं गए और वीरबल के कैद खाने में गए और अपना फरमान दिया कि वीरबल को सम्मान के साथ कैद खाने से बाहर आने दिया जाए। बादशाह कैद खाने के बाहर रहे, वीरबल आया, बादशाह ने स्वागत किया, आओ वीरबल आओ। वीरबल ने पूछा, महाराज आज ही ऐसा क्यों हुआ? अरे वीरबल, तुम्हारा कहना सत्य था, उस दिन यदि मेरी अंगुली नहीं कटती तो आज के दिन मेरे को मर जाना पड़ता। फिर वीरबल से पूछा, अच्छा अच्छा ये बात तो ठीक है, मेरी अंगुली कट गई, मैं बच गया, भगवान ने अच्छा किया, किंतु तुम 6 महीने तक कैद में रहे, इसमें तुम्हारे पर भगवान की क्या दया हुई? वीरबल बोला, हे जहांपनाह, मेरे ऊपर तो भगवान की विशेष दया हुई, क्योंकि आप और हम दोनों सदा साथ रहते थे, आप मेरे बिना नहीं रहते, मैं आपके बिना नहीं रहता, तो मैं अपने घोड़े पर दौड़ा दौड़ा आपके साथ चलता तो अपने को दोनों को देखकर मैं तो साबित था मैं मारा जाता। तब से अकबर ने ये विचार किया कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, ऐसी बात सब में समझनी चाहिए। जैसे कोई भयंकर बीमारी आ जाए तो क्या है, ये पाप का फल है, बीमारी भेजकर भगवान पाप से मुक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों से कहता है कि बड़ा दुख है, बात बात बताए, क्या बताए, मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ है, तो लोग कहते क्या करें, तो पाप का फल है। जो भी उससे मिलने आता है लोग यही कहते हैं कि भाई ये तो पाप का फल है, बेबसी की बात है, और कोई काम हो तो हम कर दें, लेकिन तुम्हारी बीमारी दूर कैसे कर सके। तब उसको शिक्षा मिलती है कि आगे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं मनुष्य को 3 जगह बराबर जाना चाहिए, 3 जगह, जैसे नरक के 3 दरवाजे हैं, ऐसे उद्धार के भी 3 जगह हैं। ध्यान से सुनना, काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 दरवाजे, ऐसे ही उद्धार के 3 दरवाजे 3 जगह हैं। क्या? एक तो मुर्दे की सवारी निकलती हो, श्मशान में जावे, मुर्दे को देखे, ये उद्धार का स्थान है, क्योंकि उसको देख करके ऐसा रे यही दिन मेरे में आने वाला है। जिस समय श्मशान में जाओ उस समय में अपनी मृत्यु को याद करो, ऐसे लोग मुझे जलाएंगे, ऐसे मेरे छाती पर लकड़ चुनेंगे, ऐसे मुझे राख में, ऐसे मुझे जलाकर राख कर देंगे। एक तो वहां जाओ, दूसरा जहां सत्संग होता है वहां जाओ, और तीसरा जो आदमी बीमार है मरणासन्न है वह जरूर उसके पास जाओ। इन तीनों ही जगह पर भगवान हमको चेतावनी देते हैं। आपत्ति काल में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति हो और हमारा बहुत प्रेमी हो, परिवार में प्रेम तो रहता ही है, उस समय में अपने हृदय को थोड़ा मजबूत और पवित्र करके उसको भगवान की स्मृति दिलानी चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। लाखों आदमियों को भोजन कराए, उससे बढ़कर काम है कि मरणासन्न व्यक्ति को भगवान की याद दिलाए। कुंती ने भगवान से यही तो मांगा कि मुझे बार बार विपत्ति देओ ताकि आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख बहुत उत्तम है। बृहदारण्यकोपनिषद 5:11 ब्राह्मण में ये बात आई है, कि व्याधि को परम तप समझकर प्रसन्न हो जाने से तपस्या का फल मिलता है। ध्यान से सुनो, शरीर में भयंकर बीमारी आए उसको तपस्या समझ ले तो तपस्या का फल मिलता है, और उसको बर्दाश्त करता है भगवान का मंगलमय विधान समझता है तो उसका निश्चित कल्याण होता है, बीमारी से भयंकर बीमारी से कल्याण हो जाए। मनुष्य बार बार दुख भोगता है उससे तितिक्षा बढ़ती है, दुख का रहस्य समझ ले तो फिर दूसरे को दुख नहीं देता। भगवान बीमारी भेजते ही बड़ा उपकार है, भगवान का विधान बड़ा मंगलमय होता है। भगवान के विधान में संतोष आनंद हित और दया देखनी चाहिए। हम केवल बीमारी की पीड़ा देखते हैं, अरे इसमें भगवान का विधान, इसमें आनंद देखो, हित देखो, दया देखो, केवल शरीर की पीड़ा मत देखो, भगवान की दया की तरफ देखो। ये भक्ति का अंग है, शरणागति का अंग है। भगवान की दया, भगवान की दया नहीं दिखे तो मान लेना चाहिए कि हमारे में बड़ी भारी कमी आ गई। नहीं दिखे तो, नहीं दिखे तो मानो कि है, चाहे मुझे नहीं दिखे है दया, दया तो है, मान लेना चाहिए। भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान का तत्व, रहस्य और प्रभाव ये देखना चाहे तो देख सकता है। भगवान की क्रिया में, विधान में कोई प्रसन्न रहने का स्वभाव बना तो उसके अंतर से, अंतर हृदय से प्रसन्नता अपने आप व्यक्त हो सकती है। गोपियां भगवान की किसी भी क्रिया को देख देख कर प्रसन्न रहती थी, वैसे ही हमको प्रसन्न रहना चाहिए। हमको तो ऐसा विचार करना चाहिए कि देखो एक ही भगवान अनेक रूप धारण कर, देखो कैसी विचित्र विचित्र लीला धारण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी गोप ग्वाल बछड़े चुरा कर ले गए तो एक भगवान कितने गोप हो गए, कितने बछड़े हो गए। ग्वाल बालों की सब चेष्टा भगवान की तो थी, ऐसे ही इस संसार में एक भगवान अनेक रूप वाले हैं, ऐसा देख देख करके आनंद मनाना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी महाराज जब वन से अयोध्या आए तो अयोध्यावासी भगवान से मिलने के लिए ऐसे उमड़े जैसे चंद्रमा को देखकर सागर उमड़ता है, समुद्र में जैसे तरंगे होती है, ऐसे अयोध्यावासियों के झुंड तरंगों के समान बढ़ रहे थे। भगवान से सभी अयोध्यावासी मिलने वाले थे तो भगवान वहां अनेक रूप वाले हो गए, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। एक भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। भगवान कहते हैं सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भक्त है जिसकी बुद्धि इस सिद्धांत से नहीं हटती कि चर अचर सब भगवान के स्वरूप है और मैं सबका सेवक हूं। ऐसी मान्यता वाला मुझे बहुत प्रिय लगता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वे भगवान संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता है और संपूर्ण प्राणियों के महेश्वर है, और वे ही भगवान संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद है। कोई यज्ञ करता है तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ में अग्नि रूप से भोगता हूं, वैश्वानर अग्नि बनकर जठराग्नि से जीर्ण करता हूं, जो कुछ यज्ञ दान तप पूजा करते उस सब मैं ग्रहण करता हूं। गाय को घास डालो तो ये स्वीकार कर, ये मानना चाहिए कि ये घास भगवान को डाला जा रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यहां सबके साथ देव लगाया है। भगवान हमारी हमारी मां बनकर के आई हैं, भगवान हमारे पिता बनकर आए हैं, भगवान ही अतिथि बनकर आए, भगवान आचार्य बनकर आए। नामदेव जी रोटियां बना रहे थे, कुत्ता आया रोटी लेकर भगा, तो पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़े और कहा, हे भगवान विट्ठल भगवान, ठहरो ठहरो, लूखी रोटी है, मेरे पास घी पड़ा है, रोटी को चौपड़ने दो। दौड़ते गए, अंत में भगवान बीच में प्रकट हो गए। एक समय उनकी कुटिया में आग लग गई, नामदेव जी की कुटिया में, उसमें कुछ भाग जलना बाकी था, तो नामदेव जी लकड़ी से उसको भी जलाने लग गए। लोगों ने कहा, अरे बाबा ये क्या करते हो, क्यों? अरे इतनी कुटिया बच गई। नहीं, इन भगवान का विदाई अग्नि रूप से भगवान आए हैं, अग्नि रूप से भगवान आए हैं, तो हम इनको जो है अब बाकी कुटिया का बचा के क्या करेंगे, अग्नि तो साक्षात नारायण है। अब वो उसको डालने लगे। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, वो महात्मा होता है। भगवान तो संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से विराजमान है। एक अलौकिक बात है, भगवान भक्त भगवान को किस तरह प्यारे हैं। आपको एक विचित्र बात सुनाता हूं, बहुत बढ़िया बात है। एक समय, बहुत अच्छी बात, एक समय भगवान रुक्मिणी जी के सामने राधा जी की खूब प्रशंसा करने लगे, तो रुक्मिणी जी के मन में ईर्ष्या हुई कि मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूं, सदा से इनकी अर्धांगिनी, इन्हीं का स्वरूप हूं, ये राधा की क्यों करके ऐसी प्रशंसा करता है, मैं भगवान की कितनी सेवा करती हूं, एक मामूली ग्वालिन की इतनी प्रशंसा करते हैं। ऐसा मन में आया, मुंह से कुछ नहीं बोली, मन में ये भाव था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ सिद्धाश्रम में तीर्थ में स्नान करने गए। वो जहां स्नान कर रहे थे देव योग से, वहीं राधिका जी भी अपनी सखियों के साथ उसी तीर्थ पर स्नान करने के लिए आई। बड़े प्रेम से भगवान की पत्नियों का और राधा जी और राधा जी की सखियों का मिलना हुआ। रुक्मिणी जी ने राधिका जी को बड़े प्रेम से गले मिलकर अपने यहां भोजन करने के लिए कहा। राधिका जी रुक्मिणी जी को देख देख कर बहुत आनंदित हुई। राधिका जी के प्रेम के कारण से नेत्रों से जलधारा बह निकली। कहने, रुक्मिणी जी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। क्यों लगती हूं राधिका जी? कि तुम हमारे प्रिय के प्रिया हो, प्रियतम की प्रिया हो। रुक्मिणी जी ने कहा कि देखो राधिका जी, मुझे आप इसलिए प्यारी लगती हो कि आपका यशोगान, आपकी महिमा स्वयं हमारे प्रियतम अपने मुख से बोलते हैं। राधा जी ने कहा, रुक्मिणी जी ये तो प्रशंसा उन्हीं की है, मेरे पास तो प्रशंसा की कोई बात दिखती नहीं है। आओ आओ आओ। रुक्मिणी जी ने कहा, लो दूध पियो। तो खूब अच्छा दूध पिलाया, बड़े सम्मान के साथ राधिका जी को भेज दिया। अब वहां रात्रि के समय रुक्मिणी जी भगवान के चरणों को यूं दबाने के हाथ चरण दबाने के लिए हाथ लगाने लगी, तो भगवान शिष्कर, अरे ये क्या हो गया हमारा, अरे मेरे पैर में फफोले हो गए। रुक्मिणी जी ने देखा कि अरे फफोले हुए, बड़े बड़े फफोले। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो कभी इस प्रकार से चलते ही नहीं हो, आपके ये फफोले कैसे हो गए, चरणों में फफोले कैसे हो गए? भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी ये बात मत पूछो, नहीं नहीं, आपके चरणों में फफोले हो जाए कष्ट पाओ, हम पूछे नहीं कि नहीं नहीं रुक्मिणी जी तुम ये बात मत पूछो। रुक्मिणी जी ने कहा, ये तो बताना पड़ेगा किस कारण से फफोले हुए। बहुत आग्रह किया तो भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी जी, राधा जी के हृदय में मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं और तुमने उनको बहुत गरम गरम दूध पिलाया और राधिका जी ने उसे तुम्हारे द्वारा दिया हुआ समझकर बड़े प्रेम के साथ पी लिया और वो दूध राधा के हृदय में गया और उनके हृदय में मेरे चरण थे ही फफोले हो गए। भगवान ने कहा, बस मेरे फफोले होने का यही कारण है। राधिका जी बात सुनते सुनते एकदम प्रेम समाधि में लीन हो गई। भगवान ने पूछा, राधिका जी ये क्या हुआ, अब तुम बताओ। वो तो बेहोश हो गई। भगवान ने उसको होश में लाकर पूछा कि क्या बात है। रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया कि राधिका जी का प्रेम देखकर मैं उस प्रेम में डूब गई कि ओह राधिका जी कितनी महान है। इस प्रकार से भक्तजन अपने से ज्यादा दूसरे में भक्ति देखकर उसकी भक्ति में आनंद मनाते हैं। जो भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है, भगवान उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं। भगवान को हम हृदय में बसा ले या भगवान हमें हृदय में बसा ले तो लाभ ही लाभ है। आपने तो संसार को हृदय में चढ़ा रखा है, उसको उतारो और उसकी जगह भगवान को बैठाओ। भगवान हमें हृदय में बसा ले, हमारे सारे शरीर का स्नान हो जाता है। गोपियों के और भरत जी के दृष्टांत से यह बताया कि पहले भगवान के साथ संयोग होकर वियोग हुआ और वियोग संयोग के पूर्व है। वियोग के बाद गोपियों के साथ हृदय से नित्य सत्संग होता था। देखने में वियोग था लेकिन नित्य संयोग था। व्यवहार भी वियोग जैसा ही होता था। ये व्यवहार संयोग से बढ़कर है। यहां तरसना तरसाना में भी बड़ा आनंद है। हम लोग वियोग और प्रेम के तत्व को क्या समझ सकते हैं? जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक भगवान क्या है, उनके मिलने का आनंद क्या है, ये हम समझ नहीं सकते। केवल संसार में रचे पचे हैं, कैसे समझेंगे? हमें भगवान की भूख ही नहीं है। हमारा हृदय तो भोगों की इच्छा की अग्नि में जल रहा है, वहां भगवान के आनंद का क्या पता चलेगा? भगवान के मिलने के लिए उपाय है, रात दिन इस धुन में रहो, कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान मिले। ये जो कैसे भगवान मिले, ये जो आपके मन में तड़फन होगी, ये भजन से कम नहीं है। जैसे लोभी आदमी के धुन रहती है, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, किस उपाय से मिले। वो जानता है कि ये मैं ठगाई कर रहा हूं, जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो जानता है कि मेरा माल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी रुपया मिलेगा, इस लोभ से वो अपने घटिया माल को अच्छा बनाएगा और ठगाई करने वाले की वृत्ति को भी नहीं अच्छा बताएगा और अपनी ईमानदारी बताएगा, सब बताएगा, माल बेचकर रुपया ले लेगा। ऐसे हम लोगों को लोभी आदमी के व्यवहार से ये सीखना चाहिए, किसी भी उपाय से भगवान मिलने चाहिए। भगवान को हम चाहते हैं तो भगवान भी हमको चाहते हैं, किंतु हम तो रुपया चाहते हैं यार, रुपए में रुपए हमें थोड़ी चाहते हैं। एक तरफ का प्रेम है, अरे भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको चाहेंगे, रुपयों को चाहोगे तो बस आप ही रुपयों को चाहोगे, रुपया तो आपको चाह नहीं सकते, क्योंकि रुपया तो जड़ है। संसार में कोई हमारा मित्र हो उसे हम चाहे, वह मित्र यदि लायक हो तो बदले में हमको चाहेगा। भगवान के विषय में एक विशेष बात है, हम चाहे नालायक भी हैं, लेकिन यदि हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमको नालायक समझ करके छोड़ने वाले नहीं है। भगवान तो कितनी बड़ी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे मनुष्यों, अरे जीवों, तुम्हारा और मेरा तो साक्षात संबंध है, मम एव अंश है। जैसे लड़का पिता का अंश है, ऐसे ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारा तो परमात्मा से सहज प्रेम होना चाहिए। देखो आकाश में सूर्य की ओर दृष्टिपात करो, यहां कोई भी लकड़ी जलती है, आग पैदा होती है, ऊपर की तरफ जाती है, सूर्य का अंश है आग, और ये जल का प्रवाह सदा नीचे की ओर जाता है, समुद्र की ओर जाता है। तो ये हमसे तो अच्छा अग्नि है, हमसे तो अच्छा ये जल है जो स्वाभाविक ही अपने अंशी के तरफ जाता है। हम हृदय के टुकड़े, भगवान के हृदय के टुकड़े हैं और भगवान की तरफ नहीं जाते। ईश्वर हमारा जितना उपकार करता है उतना कोई उपकार नहीं कर सकता, इसलिए उनमें हमारा विशेष प्रेम होना चाहिए, उनके साथ हमारा आत्मीय संबंध है, आत्मीय संबंध जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। उन भगवान के गुण, प्रभाव, व्यवहार, विरद, महिमा को देख देख करके हमको आकर्षित होना चाहिए। अपने अंतःकरण शुद्ध होने से अज्ञान का पर्दा दूर होता है तो भगवान की तरफ झुकाव होता है। भगवान से बार बार कहो, देखो बहुत बढ़िया बात, भगवान से बार बार कहो, हे भगवान, आप सब कुछ कर सकते हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हे प्रभु, कैसे मिलना हो, मेरी तरफ मत देखो, बस मेरी तरफ मत देखो, अब तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बस इसी पर विचार करो। इस प्रार्थना का भगवान पर बहुत असर पड़ता है। ईश्वर के मिलने की चाहना उनसे प्रेम सत्संग करने से होती है। भगवान के मिलने से पूर्व विरह व्याकुलता भगवान से मिलाने वाली होती है। गौरांग महाप्रभु भगवान के विरह में व्याकुल होकर घूमते रहते थे, उनको कभी दिन का भी ज्ञान नहीं, कभी रात्रि का भी ज्ञान नहीं होता था, परंतु सारे लक्षण सब भक्तों के वैसे ही हमारे में घटे, ये बात नहीं है। मीरा भी विरह में व्याकुल होकर भगवान का गुणगान गाती थी। सारांश यह है कि व्याकुलता एक बहुत उच्च कोटि की चीज है। एक तरफ भगवान हो और एक तरफ भगवान की व्याकुलता हो तो अच्छे पुरुष होते हैं, वो व्याकुलता को लेंगे, भगवान को भी नहीं लेंगे, कि नहीं हमें तो आपकी व्याकुलता चाहिए। भगवान के गुण प्रभाव की तरफ लक्ष्य जाएगा, सत्संग या महापुरुषों का संग होगा तो ये तो तत्काल हृदय का मल दोष दूर हो जाएगा। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, या तो जब और तब जितनी भी दूरी नहीं है, लेकिन जब और तब तो कहना पड़ता है। भगवान के नाम का जप, सत्संग, महापुरुषों के वचनों की आवृत्ति से भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा होती है, श्रद्धा प्रेम होता है, और फिर जब मिलने की इच्छा होती है उस इच्छा में जो भगवान का नाम लिया जाता है वो असली भजन ध्यान होता है। नारायण नारायण नारायण, ऐसे ऐसे लेख पढ़ने के बाद वास्तव में कुछ बात रह ही नहीं जाती है। बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं।